तारीख 25/7/1997 श्री स्वानुभूति दर्शन प्रश्न 212 पर पूज्य भाई श्री शशिभाई नो भावनगर में प्रवचन सड़ंग प्रवचन नंबर 154।
ज्ञानी को शुभराग काला नाग जैसा दिखता है ऐसा कह करके ज्ञानी को प्रविकल्प दशा में निरंतर पूर्णता की भावना रहा करती है ऐसा ही कहना है क्या? ऐसा प्रश्न उठाया है। समाधान, हाँ कल वो चर्चा चलती थी थोड़ी, जाने को शुभराग कैसा दिखता है और उसको जाता भी रहता है, दोनों बात चली थी। एक प्रश्न आगे का उसकी भावना जो पूर्णता की है यही कारण से ऐसा होता है क्या? समाधान दिया है यहाँ, स्वानुभूति निर्विकल्प दशा हो, स्वानुभूति माने निर्विकल्प दशा हो तब तो विकल्प प्रति उसका उपयोग भी नहीं है, यानी विकल्प होता ही नहीं। जब निर्विकल्प दशा शुद्ध होती हो, स्वानुभूति होती है, तब तो विकल्प होता नहीं, यानी उपयोग और विकल्प का संबंध नहीं है, क्योंकि विकल्प की उत्पत्ति बंद हो गई है, विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ विकल्प और उपयोग का कोई संबंध है ही। विकल्प प्रति का उपयोग भी नहीं ऐसा लिखा है, लिखने में थोड़ा फर्क हो गया है, विकल्प है ही नहीं तो उसके प्रति का उपयोग का सवाल रहता ही नहीं। संकलन में थोड़ा तो कहीं कभी कभी कहीं हो सकता है, क्योंकि भाव भाषण तो होना चाहिए, लिखने वाले को भी भाव भाषण हो रहे तब तो कहीं चुप नहीं हो रहा। स्वयं तो आनंद में निर्विकल्प दशा में है, क्या है उस वक्त तो ज्ञानी निर्विकल्प आनंद दशा में है, तो वहाँ तो विकल्प है ही नहीं, निर्विकल्प का मतलब विकल्प है ही नहीं, फिर इसके प्रति का उपयोग होना नहीं होने का सवाल है। उपयोग अपना परमात्मा स्वरूप में लगा हुआ है, निज परमात्मा स्वरूप है, उसमें उपयोग आत्मरस से तीव्र आत्मरस से सराबोर होकर के उपयोग उसमें लगा हुआ है, परंतु जब बाहर उसका उपयोग आता है निर्विकल्प दशा पूर्ण होने के बाद, उपयोग अंतर में स्वरूप में लगा हुआ था तो वहां से छूट करके बाहर आता है, तब जानता है कि इतनी अधुराश है मेरे में, अधुराश है मेरा पुरुषार्थ अधूरा है, इसलिए आनंद से छूट करके उपयोग बाहर आ गया, नहीं चाहते हुए भी आनंद तो उतना और ऐसा आनंद आता है, वो उतना आनंद आता है कि वहां से छूटना गमे ही नहीं। बाहर आने में तो आकुलता है, अशांति है, इसकी उपमा शास्त्र में भी है कि जैसे कोई मछली पानी से बाहर आती है तो तड़फड़ाती है, वैसे ज्ञानी को निर्विकल्प आनंद से छूट करके बाहर आना होता है। तो आनंद में रहने वाला जीव अशांति में नहीं रह सकता। जैसे मछली पानी में रहने वाली है वो पानी के सिवा नहीं जी सकती, ऐसा आनंद से बाहर आने वाला को तड़फड़ाहट होता है। स्वभाव में तो उसको तो स्वभाव तो चालू होता ही नहीं। निर्विकल्प शुद्ध उपयोग के पूर्व क्षण में और निर्विकल्प उपयोग के पूर्ण होने के बाद जो क्षण चालू होती है उत्तर क्षण में, पूर्व क्षण में और बाद के उत्तर क्षण में, आत्मा के संबंधित आत्मा के लक्ष्य से उच्च कोटि के शुभ भाव चलते हैं। कैसे शुभ भाव चलते हैं? एक दो उच्च कोटि के उत्कृष्ट शुभ भाव चलते हैं उस भूमिका के स्थानानुसार। फिर भी वहां अशांति है, दुख है, तड़फड़ाहट होती है मछली के। ऐसा आनंद और इतनी शांति है उससे नहीं चाहते हुए भी बाहर निकलना होता है। स्ववस्था से नहीं, परवस्था से तो मालूम पड़ता है, उसको जानने में आता है कि मेरा पुरुषार्थ की अधुराश है, कि मेरे पुरुषार्थ की कमी है, इसलिए आनंद छूट गया मेरा, मेरा पुरुषार्थ कम हो गया, तो दशा बदल गई, निर्विकल्प दशा बदल गई। पुरुषार्थ कम होने से चारित्र कम हुआ। पुरुषार्थ अगर तीव्र होता तो चारित्र भी स्वरूपाचरण का ही रहता। आत्मा ने लक्ष्मा राखी ने, आत्मा के लक्ष्मा रख करके मैं ऐसा ही हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण शुद्ध हूँ, सब सर्व से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा स्वरूप लक्षी अंतर जल्प, कैसा सूक्ष्म स्थूल राग ने सूक्ष्म विकल्प, स्थूल विकल्प नहीं चलता, सूक्ष्म विकल्प चलता है। हाँ वही आत्मभाव नहीं है, आत्मा को लक्ष्य में रख करके जो भाव आता है वो आत्मभाव नहीं है, लेकिन वो भी सूक्ष्म विकल्प रूप है, स्थूल विकल्प रूप नहीं है, मोटा नहीं है, सूक्ष्म है। फिर भी वहाँ अशांति है, क्या है? आकुलता है और अशांति है। किसकी बराबरी में? निर्विकल्प शांति और आनंद की बराबरी। जिसको स्वरूप का भाव भाषण नहीं, उनको तो स्वरूप का विकल्प सूक्ष्म होने से भ्रांति हो जाती है शांति की, क्योंकि वहां तो कषाय मंद हो जाता है, तो उनको शांति की भ्रांति हो जाती है। मुझे आत्म शांति प्रकट हो गई, मुझे आत्मा का आनंद प्रकट हो गया। वहां ज्ञानी को आकुलता और अशांति मालूम पड़ती है। विभाव है, उसकी जाति की परख है और उसके साथ इसका भेद ज्ञान चलता है। विभाव का निषेध और स्वभाव का आदर, ऐसा भेद ज्ञान चलता है भीतर में। और जिसको भेद ज्ञान नहीं चलता है उनको कषाय मंद होने से और विकल्प शांत होने से आत्म शांति की भ्रांति हो जाती है, लेकिन ऐसे आत्म शांति होती तो कैसे पता चले कि यह शांति मानसिक शांति है और आत्मा की शांति है। वेद ज्ञान चलता है कि नहीं चलता उससे पता चलता है, जिसको भ्रांति होती है उसको वेद ज्ञान चलता नहीं, और वेद ज्ञान में अशांति और शांति की परख है, अशांति का निषेध है, उसको भ्रांति होती वेद ज्ञान से पता चलता। यह विभाव भाव मुझे नहीं चाहिए, इतना विभाव भी मुझे पोसाता नहीं। कैसी भावना होती है कि ये विभाव भाव मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके पोषण नहीं है। ठीक है, जो भी अशांति है विभाव है उसमें मलिनता भी है, पर अल्प मलिनता भी शुद्धि को चाहने वाले को साथी, अल्प मलिनता भी को साथी। अल्प मलिनता का दृष्टांत लिया था कल कि गंदगी को जीभ पर कौन रखेंगे, थोड़े गंदगी, और जो पस होता है उसको कोई रहने नहीं देते, क्योंकि वो विकृति है, मलिन है और विकार है। विकार की जाति, विकार अल्प हो या ज्यादा हो, जाति तो विकार की है। दृष्टांत लिया है, आंख में जैसे कणु, कणु क्या बोलते हैं आपके यहाँ, कण होता है, कण बोलते हैं, आंख में जैसे कण नहीं समाता, इतनी बड़ी आंख है, देखने में आड़ा आता नहीं, हाँ, पर बहुत छोटा है, रहने दो, एक कोने में पड़ा रहेगा, ऐसा चलता क्यों? कि ये शरीर का बहुत सेंसेटिव अवयव, सबसे ज्यादा सेंसेटिव कोई होता है तो आंख है। सेंस भी सबसे पहले आंख में आती है, किसी भी प्रकार के बहुत से उसके भाव होते हैं, आंख में सैकड़ों भाव व्यक्त होते हैं, आंख से बहुत सेंसेटिव है। एक कण को भी वो रख सकती है, खटकता है, आंख में कण होता है तो खटकता है, कब निकले, दूसरे दूसरे काम में लगे हुए भी ये खटकता है, इसको निकालो, उसको निकालो, पता नहीं। जैसे आंख में कण नहीं समाता, वैसे द्रव्य दृष्टि से मैं पूर्ण होने से पर्याय में थोड़ी भी उतनी भी कचास मुझे नहीं चले। सम्यक दर्शन हो गया है, अब वांधा नहीं है, ऐसा नहीं होता। द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि माने द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि वाले को थोड़ा भी कचास, थोड़ा भी विभाव उसको पोसाता, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि कैसी है? शुद्ध द्रव्य की है। जब मैं परिपूर्ण शुद्ध हूं तो मेरी अवस्था में अशुद्धता क्यों, थोड़ी भी क्यों, उसको पोसाते। अधिकार के विषय में भी नहीं चलता, एक एक बाप का दो लड़का है, बंटवारा होता है, कितना होगा? 50-50, आधा आधा। तो एक भाई ऐसा बोलेगा कि नहीं, हमको 51% चाहिए, तुम एक कम करो, छोटा है तो या बड़ा है तुम कैसा भी, कुछ भी बाने से, छोटा बड़ा बाने, तुम्हारे पास ज्यादा है हमारे पास कम है, बंटवारे में 1% दे, 2% तुम्हारा कम करेंगे, हम ज्यादा लेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या कहेगा? हमारा अधिकार है, जैसे जमीन होती, तुम इतना कम करो, कोई लेगा नहीं, मेरा पूरा अधिकार है, जितना तुम्हारा उतना हमारा, हम चाहे तो पूरा दे दे सकते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात है, 1% भी कम लेने वाले नहीं है, अधिकार हमारा पूरा है, जितना तुम्हारा उतना ही हमारा पूरा है, उदारता से हम पूरा का पूरा दे सकते हैं, लेकिन तुम अधिकार जमा करके 1% भी हमारे में से ले सकते है? नहीं है, होता है कि नहीं होता? ऐसे आत्मा पूर्ण शुद्धि का अधिकारी है, केवल ज्ञान और परमानंद का अधिकारी है, तो अधूरा क्यों लेगा? क्यों अधूरा क्यों नहीं चले? हमको अधूरा नहीं चलेगा, ऐसी बात है। मैं द्रव दृष्टि से मैं पूर्ण होने से पर्याय में मुझे कुछ भी अधूरा नहीं चाहिए। राजा का राजकुमार है, उनको बोलो कि तुम एक सेकंड के लिए थोड़ी भीख मांग लेना है। क्या है? ज्यादा हम तुमको नहीं बोलते, हमेश के लिए नहीं बोलते। क्या बोलेगा? कि ये बात करने की तुमने हिम्मत कैसे की? क्या बोलेगा? मैं भविष्य का राजा, राजकुमार तो राजा ही होता है, भविष्य राजगादी पर बैठने वाला, मैं भी मांगा हूँ क्या? ये बात तुमने कही कैसे? ऐसे बोले दृष्टि है वो जिनेश्वर का लघुनंदन है, और मुनिराज है वो गुरुनंदन है, तो बड़ा बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, दोनों भगवान के पुत्र ही है, तो कैसे भीख मांगे? इसलिए मुनि याचना नहीं करते कभी, मुनि कभी याचना नहीं करते। देखो दिगंबर श्वेतांबर में मुनियों का व्यवहार में वो बड़ा फर्क है। श्वेतांबर के जो मुनि लोग हैं वो चला के जाएंगे खाना लेने के लिए, किसी के यहाँ भी चले जाएंगे, जैसे अन्य मत में जाते हैं, अन्य मत में तो ऐसे बोलते हैं भिक्षां देहि माम, हमको भिक्षा दे दो, संस्कृत में बोलते हैं भिक्षां देहि माम, हमको भिक्षा दे दो, वो लोग मोड़ देते हैं, श्वेतांबर जाते हैं, खड़े रह जाते हैं, दे देते हैं, वो ले ले लेके निकल जाते हैं,
बोलते हैं धर्म लाभ, बोलते हैं
धर्म लाभ, तो उसका ध्यान नहीं होगा, तो ध्यान नहीं हो तो धर्म लाभ ऐसा बोले तो मतलब कि धर्म का लाभ तुम ले लो, हम आए हैं तो तुम धर्म का लाभ, वो भी एक मांग मांगने की एक चेष्टा है। दिगंबर मुनिराज में ऐसे नहीं, वहां उनको नवदा भक्ति से आमंत्रण करें तभी वो हार लेंगे। उसको विनती करते हैं कि आप पधारिए हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आपके लायक आहार भी शुद्ध है, हमारा आहार देने का मन है वो मन भी शुद्ध है, और हम आपको आमंत्रण देते हैं उसमें वचन भी हमारे शुद्ध है और हम इसे गंदे नहीं है, नहा धोकर के स्वच्छ कपड़े पहन करके आए हैं, तो हमारी काया भी शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि,
आहार जल शुद्ध
है,
आहार जल शुद्ध है,
और आहार भी हमारे शुद्ध है, आपके लायक है, कोई भी उद्दिष्ट आहार ये हमने बनाया आपके उद्देश्य से बनाया नहीं, और नहीं खाने लायक अभक्षक चीज उसमें कोई प्रयोग किया नहीं, आप पधारिए 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 ऐसा कह करते हैं, बार बार कहते हैं तो वो पधारते हैं तो उसका पाद प्रक्षालन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी स्तुति वंदना करते हैं, नवदा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति करते हैं, फिर उसको आहार देते हैं, ये सिस्टम है, क्योंकि ये मुनिराज है, इंद्रादि देव उसको वंदन करने को आते हैं, चक्रवर्ती भी उसको वंदन करते हैं, इतने वो महान है, वो भिक्षा से मांगेंगे, ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है जगत के, हाँ चलते फिरते सिद्ध, ऐसा सिद्ध की जिसमें सिद्ध भगवान की कल्पना की जाए, मोक्ष तत्व है वो, तो कैसे है मोक्ष तत्व है, वो कोई याचना करते हैं, मेरे बादशाह भी उससे दूर रहते हैं, क्योंकि बादशाह की परवाह नहीं करते, बादशाह वंदन करने को आते तो आंख खोले उतना भी जरूरी नहीं है को देखे, आंख खोल करके मुझे कौन बन रहा है, अपने ध्यान में रह जाते तो रह जाते, दिखते भी नहीं, अभिग्रह भी कभी धारण करते हैं, उतना सब होने पर भी आहार नहीं है, मेरे अभिग्रह के अनुकूल बाह्य परिस्थिति होगी तो आहार का योग होगा ऐसा मैं मानता हूँ, वरना मैं मानता हूँ कि आज मुझे आहार का योग है ही नहीं, तो वैसे ही मेरी आत्मा तो अनाहारी है, तो स्वरूप के आनंद में चले जाते हैं और वहां तृप्त तृप्त हो जाते हैं, क्या जैसे खाने से तृप्त हो जाते हैं वैसे स्वरूप के आनंद में वो तृप्त हो जाते हैं, आहार का विकल्प छूट जाता है, जैसे खाना खाने के बाद आहार का विकल्प नहीं रहता वैसे उपवास के का ख्याल आ गया कि आज मेरे अभिग्रह के लायक परिस्थिति नहीं है, आज तो उपवास होगा, तो स्वरूप में वास कर लेते, उप मैंने समीप, स्वरूप समीप में वास कर लेते हैं, और जैसे आहार के बाद विकल्प छूट जाता है आहार नहीं लेने का, ऐसी परिस्थिति महाराज की हो जाती है, वो तो वापस जंगल में चले जाते हैं, बस ऐसे ही उदीर्णा करने की उनका विकल्प आता है, पूर्व कर्म की उदीर्णा, जो संचित कर्म है उनको स्थिति को संक्षेप करके उदय में आ जाए, अब वो मोक्ष में जाने वाले हैं तो पूर्व मंथन किया है उसका हिसाब किताब की सफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, सब अकाउंट स्क्वायर्ड अप करना है, खत्म, कोई लेना देना रहना नहीं चाहिए, तब मुक्त में जाना, ऐसे होते यथार्थ पद्धति पीताम्बर में तो काफी विकृति आ गई, वो तो उनकी कथा में वहां तक बात आती है कि महावीर भगवान ने दवाई मंगाई, टट्टी लग गया, खून का टट्टी लग गया, बहुत तकलीफ हो गई। मांगे तीन लोग का नाथ है तीर्थंकर, तो तीन लोग के नाथ हो गए, वो मांगे तो हमारे लिए वो लाओ वो लाओ, ये बात कभी संभव है?
दवा लेना भी ताहार है,
वो भी आहार है, मुनिराज भी नहीं मानते हैं, ये तो मुनीश्वर है, मुनिंद्र है, मुनियों के श्रेष्ठ, मुनियों के इंद्र, जिनेंद्र है वो मुनिंद्र है, वो मांगे वो बात तो रहती नहीं, मुनि नहीं मांगते तो मुनिंद्र तो कैसे मांगे? सवाल बना। ऐसे अपनी दशा में अधूरा आस, सम्यक दर्शन होने से, द्रव्य दृष्टि होने से पोसाती नहीं, पोसाती इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। जिसको पोसाती है वो ठंडा हो जाएगा, वो रुक जाएगा और वो गिर जाएगा। सम्यक दृष्टि को कभी पोसाती नहीं है, ये बात कहते हैं। इसलिए उनको राग काला नाग जैसा लगता है, इसलिए लगता है हमको तो ये सब छोड़ के पूर्ण हो जाना है, शीघ्र पूर्ण हो जाना है, ये बात है। यह मुझे आदरणीय नहीं है, राग करना किसी भी प्रकार ना प्रकार का वो मेरे को करने लायक नहीं है, मैं पूर्ण हो जाऊं, किसी उग्र भावना वर्तती है, उग्र भावना वर्तती है, शीघ्र पूर्ण हो जाऊं, त्वरा से स्वद्रव का रक्षक हो जाऊं, त्वरा से समझ जाए कृपा हो जाए। 108 से 117 वचन में 108 से 117 निर्विकल्प दशा के वक्त भी, निर्विकल्प दशा के वक्त विकल्प प्रति का उपयोग नहीं है, यानी विकल्प होता ही नहीं, उपयोग विकल्प में जाता ही नहीं, क्योंकि विकल्प तो है ही नहीं। और जब बाहर आता है तो भेद ज्ञान की धारा बढ़ती है, विकल्प चालू होता है साथ साथ भेद ज्ञान भी चालू होता है। विकल्प हुआ इसलिए अकेला विकल्प है ऐसा नहीं है, क्या विकल्प हुआ इसलिए अकेला विकल्प है ज्ञानी को ऐसा है ही नहीं, भेद ज्ञान साथ चलता है, यानी विकल्प का निषेध भी साथ साथ, विकल्प के साथ विकल्प का निषेध भी है। उसे विभाव के साथ एक तो बुद्धि नहीं, विकल्प है विभाव है, लेकिन एकत्व का अपनापन का वहाँ अभिप्राय नहीं है, और अपनापन का मैंने अपने अस्तित्व का अनुभव भी वहाँ नहीं है। विकल्प है लेकिन अस्तित्व स्वरूप में अनुभव गोचर होता है, विकल्प में अस्तित्व अनुभव गोचर होता नहीं है। तो इस तरह है कि मैं मेरे स्वरूप में, जो मेरा स्वरूप पूर्ण वितराग है, कैसा है? पूर्ण वितराग है, ऐसे पूर्ण वितराग मेरे स्वरूप में मैं यूं का यूं हमेश का हमेश रहता हूं। बगल में एक विकल्प चलता है, बाजू में कहाँ चलता है? बाजू में चलता है, मेरे में नहीं चलता है। क्यों? कि तेल में पानी नहीं, पानी में तेल नहीं रहता, तेल का बर्तन भरा हुआ हो उसमें पानी का बूंद पानी रहे कोई, तेल में पानी नहीं होगा, जाएगा नहीं। और पानी की बाल्टी में कोई तेल का बूंद रेड़े, पानी में तेल नहीं जाएगा। तेल तेल में पानी, पानी में रहता है। ऐसे मेरे में विकल्प का प्रवेश होने की गुंजाइश नहीं, अवकाश नहीं। होता है बगल में, जानता हूं तो बगल में उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न होता है और अपने आप शांत हो जाता है। तो होता है अपने आप होता है, बाहर आता है तब तो विकल्प होता है, अपने आप होता है। इसका मतलब कि मैं करता नहीं, मैं करवाता भी नहीं, और जो होता है उसको मैं अच्छा मानता हूँ, मैं अनुमोदन करता नहीं। करना कराना अनुमोदना मेरे उसमें है। क्या है तो रहने वाले ही नहीं। अज्ञानी जीव को कुछ विकल्प अच्छे लगते हैं वो रखना चाहता है, ये राग मुझे अच्छा लगता है, ऐसा राग मुझे होना, फिर भी उसको नहीं रहता है, लेकिन वो लालायत रहता है। ज्ञानी को तो उपेक्षा वर्तती है, उदासीनता वर्तती है, और जानता है कि वो आता है जाता है, ये ट्रैफिक है मेरे आंगन के, क्या मैं मेरे घर में बैठे बैठे देखता हूँ ज्ञाता दृष्टा रह करके, आंगन में आने जाने वाला दिखाई देता है, सहज दिखाई देता है, क्योंकि आंगन में आता जाता है। ठीक है, हमारा लक्ष्य उस पर है। कितना भी सुबह से शाम तक ट्रैफिक आता जाता रहे, हमें क्या, हम उस पर ध्यान देने वाले नहीं। मुमुक्षु दशा में ऐसा कहेंगे कि अवलोकन करो कैसे कैसे भाव आते हैं, फिर ज्ञान दशा में गुनाह खा जाता है, उपेक्षा हो जाती है, जैसे आए वैसे आए और गए, हमें क्या, हमें आने जाना उसका स्वभाव है। हम वहां के वहां हमारे घर में सही सलामत बराबर बैठे हैं, जगत को और जगत की लीला को मुफ्त में बैठे बैठे देखते रहते हैं, उसमें कोई हमको हरक शोक होता न, हर्ष होता है न शोक होता है।
अच्छा तो विभाव का निषेध किस प्रकार जाता है?
बस उसकी उपेक्षा होगी, वही उसका निषेध है।
होती है
विकल्प करना नहीं पड़ता है कि ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा विकल्प करना पड़ता है। उसकी उपेक्षा है वही उसका अनादर है, वही उसकी उपेक्षा है। जैसे कोई किसी का यहाँ जाता है और उसका आदर सत्कार होता नहीं, आइए पधारिए बैठिए पानी लीजिए चाय पीजिए, कुछ नहीं बोलेगा, खाना खाइए कुछ नहीं बोलेगा, अरे सामने भी नहीं देखेगा आया कि नहीं आया, तो क्या हो गया, अनादर हो गया। आने वाले को क्या लगेगा, यहाँ तो हमारा कोई आदर सत्कार है ही नहीं, हमारा अनादर होता है, हम यहाँ रहना नहीं है, आना नहीं है, आइंदा आएंगे भी है। जिसको आदर सत्कार नहीं मिलता वो दोबारा आता है क्या, है? नहीं आएगा। ऐसे जिस विकल्प को आधार नहीं मिलता, जिसका अनादर होता है, वो बेचारा फिर से आएगा, वो तो जब तक आता है कि उसको आधार मिलता है आदर मिलता है तब तक, उसका अनादर हो गया तो वो भी निराधार होकर के चला जाएगा, ऐसे वितराग हुआ जाता है, ऐसे पूर्ण हुआ जाता है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान दशा की मस्ती ऐसी होती है, क्या होती है, वो अपने में मस्त रहता है। अज्ञानी जगत की चिंता करता है, क्या करता है, जगत की चिंता करता है, ज्ञानी अपने आप में मस्त रहते हैं। तो उसको विभाव होता है उसमें, एकत्व बुद्धि नहीं, अपनत्व नहीं, मैंने किया वे मैं हुआ ऐसा अनुभव करते
प्रयास
है। जिस काल में जैसा भी विकल्प होता है तो अपनी योग्यता के अनुसार होता है, कैसा होता है, अपनी योग्यता अनुसार होता है। उस योग्यता भीतर में थी वो बाहर आ गई अपने सकाल में, बस मेरा और उसका कोई मेल नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है, पर मेरा अस्तित्व मेरे स्वरूप में और मेरे स्वरूप परिणति में समाप्त हो जाता है। इस बार मेरा अस्तित्व है, ज्ञानी राग पर अधिकार जमाता है, ज्ञानी ने अधिकार छोड़ दिया है, ये मेरी चीज है। तो राग पर अधिकार नहीं है तो राग का विषय पर भी अधिकार नहीं, इसका समूह मेरा है। जग को दे दी जग की निधियां, जगत की संपत्ति जगत को देनी, जगत वाले उसको जैसा करना है वैसा करो, हम तो वो निकल पड़े तो निकल पड़े, हमने पीठ दे दी है, हम मुड़ करके भी पीछे देखेंगे कैसे निकल जाते हैं। और वो अभिप्राय ज्ञान दशा में पहले हो जाता है, अभिप्राय की फेर बदली हो गई, अभिप्राय की फेर बदली होने से दशा की फेर बदली भी हो जाएगी। जैसा अभिप्राय सम्यक ज्ञान में हो गया उसका मूर्त स्वरूप पुनि दशा में आ गया, वहां अभिप्राय हुआ या उसका थोड़ा अमलीकरण हो गया, इसलिए बिना सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान कोई मुनि हो सकता नहीं, ये पुरुषार्थ है। मुनि दशा सम्यक दृष्टि को ही होती है, ये कंडीशन क्यों, क्या अभिप्राय तो वहां बदलता है फिर मुनि दशा उसके अनुकूल, अभिप्राय के अनुकूल मुनि दशा हो जाती है, करनी पड़ती नहीं हो जाती है। जैसे आत्मा असंग तत्व है तो मुनि असंग दशा में रहते हैं, अभिप्राय क्या हुआ कि मेरा स्वरूप असंग है, वो असंग दशा में रहते हैं, संसारियों का संग करते हैं, दूसरे संसारियों को तो का सवाल नहीं, लेकिन जो परिवार के प्रियजन हैं उनका संग वो करते हैं। तो कहता है कि मेरी प्रीति खत्म हो गई, आ अब लोगों के साथ जो भी स्नेह था, जो भी प्रीति थी, अब है ही नहीं, उसका अभाव हो गया। तब मैं कैसे लाऊं? जो राग मुझे आता नहीं, मैं लाऊं कहां से? जो मेरे से हो सकता नहीं, मैं कैसे करूंगा? बात खत्म। अगले वो कहेंगे कि आपको नहीं है लेकिन हमको है, इसका क्या? वो कहेंगे कि तुमको जितना है उतना दुख होगा क्या? तुमको जितना राग है उतना दुख होगा? हमको उतना होगी, हमको दुख होने वाला है। तो अगर तुम समझदार हो हमारे जैसे, वितराग हो जाओ, सुखी हो जाओगे, और रागे रहोगे तो दुखी हो जाओगे। तो हमारी दशा देख करके आप भी अनुसरण करो, अनुकरण करो। अगर आप समझदार है तो, अगर समझदार नहीं है तो दुखी हो जाओगे, हम क्या करेंगे? और तुमको दुख पहुंचाना वो कोई हमारा अभिप्राय तो नहीं है। तुमको क्या, किसी को भी दुख पहुंचाना ये हमारा अभिप्राय है ही नहीं। फिर भी तुमको हमारे कारण से दुख होता है ऐसा लगता है, तुम हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन हम राग को ला सकेंगे नहीं, क्षमा मांग लेंगे लेकिन राग को ला सकेंगे? और हमारी वितरागता उत्पन्न हो गई है इसलिए हम क्षमा के योग्य है। ऐसा नहीं है कि हम क्षमा के अयोग्य है और क्षमा की प्रार्थना करते हैं, चाहना करते हैं, वो बात नहीं। हम क्षमा के लायक हैं, क्षमा कर देना जाओ, ऐसी बात है। तो उनकी ट्रांसपेरेंट निर्दोषता है, पारदर्शक निर्दोषता है। कैसी है? पारदर्शक निर्दोषता है। इसलिए कोई बुरा नहीं मानता, कोई बुरा नहीं मानता। तो चलो, ये भी अल्पकाल में जिनेश्वर होने वाला है, तो उसका अभिनंदन करते हैं, उसकी दीक्षा का महोत्सव करेंगे। चलो, ये तीन लोग की राजधानी लेने को चले जाने दो। पहले तो वो बात थी ना, वो क्षत्रिय पुत्र होता है, लड़ाई का ऐलान होता है, दुश्मन लोग आ गए हैं हमारे भूमि को लेने, लड़ाई लेने, तो उसकी पत्नी उसको तलवार देती है। ऐसे कोई ऐसा वो जवान होता है, कल ही शादी किया और आज लड़ाई का ऐलान हो गया क्या? कल तो घर में वो क्षत्रियाणी आई है बहुत, और आज बोले के घर लड़ाई जाहिर हो गई है, लड़ाई के मैदान पर जाना होगा। पर वो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। कभी कोई हिचकिचाता है तो क्षत्रियाणी उसको तलवार देती है और तिलक करती है उसको, तो क्षत्रिय पुत्र वो चले जाओ, अपना धर्म है, पहले धर्म को संभालो। क्या? पहले अपने धर्म को संभालो, हमारे फिक्र चिंता मत करना, और जरूरत लगे तो हम भी लड़ाई में आ जाएंगे, हम भी लड़ेंगे आपके साथ। वो भी लड़ती है, भाइया लड़ती है, किसने? हाँ, कई साथ में थे, दशरथ राजा। बहुत बहुत दिमाग वाली बाई थी कई कई जो थे, तीन पत्नी थी उसको। उसमें कई कई थे, भरत की माता भरत बहुत दिमाग वाले थे, वो दूसरे सारा के लड़ाई के साथ में रहते थे और व्यू व्यू रचना वो बनाते थे, इधर से इधर लड़ना, इधर से इधर लड़ना, इधर से इधर, ऐसे भी होते। मृत्यु का भय उन लोगों को नहीं होता है, क्षत्रियों को मृत्यु का भय नहीं होता। एक क्षत्रियो का शौर्य से भी मुनि बनने वाले का शौर्य ज्यादा होता है। उसकी वीरता अधिक है, कम नहीं है। ये तो लौकिक है, ये पारलौकिक है, अलौकिक है। अलौकिक लड़ाई में लड़ने वाले हैं। बाहर के दुश्मन को मारना आसान है, बाह्य त्याग करना आसान है, अंतर के दुश्मन को मारना त्याग करना वो उतना आसान अधिक है। ऐसी बात है, वो बात ज्ञान दिशा में होती है। यहाँ ऐसा परमार्थ है कि पूर्णता के लक्ष्य वाले को किंचित मात्र विभाव या अधिभाष पुरुषाती नहीं, अतः उसका पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है। पूर्णता की भावना तो पूर्णता की भावना को त्वरा से सिद्ध करने का करने के लिए प्रसाद पूरी ताकत से करना चाहिए। ऐसा बोध यहां से मिलता है।